महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 14
ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ श्रुतात्मने नमः नमो अरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौरसाऊनम् भूतबलिप्रणीतम् तम् बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महादबलविख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्।
आचार्य श्री भूतबली भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है।
हेलो
इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 51 पर हम गए 51। यहाँ अपने अंतर की प्ररूपना चल रही है। उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अंतर की बात देख रहे हैं, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर। अभी हम वेद मार्गना में देखने जा रहे हैं 51 पृष्ठ पर स्त्री वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति प्रमाण यानी स्त्री वेदी ने पहले भव में एक बार उत्कृष्ट किया, अंतिम भव में किया, तो 100 पल्ले पृथक होता है उसका, उसकी काय स्थिति। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय है। ओघ में कितना देखा था हमने,
अंतर्मूल,
परंतु वहां तो ओघ में तो 11वां गुण स्थान था, त्रिवेदी में तो 9वें गुणस्थान तक ही बात है, इसलिए वो केवल जहाँ उत्कृष्ट कर रहा है तभी उसका अंतर पड़ेगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं है, क्योंकि इसका उत्कृष्ट कब है तो क्षपक है, जब त्रिवेद के अंतिम समय में, तो अनादि से तो
अनुत्कृष्ट
ही था, यानी यहाँ सारी शांत वाला होगा ही नहीं, अनुत्कृष्ट अनादि से और स्त्रीवेद के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति प्रमाण। यहाँ पर भी वो देवायु बांधता है पहले भव में उत्कृष्ट अनुभाग सहित और प्रमत्त गुणस्थान वर्ती और फिर काय स्थिति के अंत में फिर दोबारा एक बार। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, मैंने बीच में एक समय के लिए उत्कृष्ट किया और उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ले। देखो ये 1/3 पूर्व कोटि पहले उसने देवायु बांधी, परंतु देवायु बांधी तो उत्कृष्ट नहीं बांधी, अनुत्कृष्ट ही बांधी। फिर 1/3 पूर्व कोटि के बाद देव में उत्पन्न हुए, देवी में 55 पल्ले के, और उसने अंत में जाके अंतमूल बाकी था तभी आयु बांधी। तो ये होता है 1/3 पूर्व कोटि और 55 पल्ले, उसको साधिक 55 पल्ले कहेंगे हम। अब पुरुष वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। उत्कृष्ट अंतर इसकी काय स्थिति यानी 100 सागर पृथक, ऊपर 100 पल्ले पृथक कहा था त्रिवेदी में, यहाँ 100 सागर पृथक या पृथक 100 सागर कैसे भी कह सकते हैं। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग स्त्री वेदी जीवों के समान है, वैसे सबका तो स्त्री वेदी के समान है, काय स्थिति प्रमाण कहीं उसकी काय स्थिति अलग इसकी अलग, बाकी तो ऐसा ही है सब जगह। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का भंग ज्ञानावरण के समान है, यानी काय स्थिति प्रमाण, एक समय से काय स्थिति प्रमाण। वैसे वहां पर भी ऐसे ही लिया था श्रीवेदी में, एक समय से लेकर काय स्थिति प्रमाण। यहाँ इसकी काय स्थिति जुदी है परंतु कथन वैसा ही होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधका जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर, वहां साधिक 55 पल्ले, क्योंकि स्त्री वेदी में एक भव उत्कृष्ट इतना हो सकता है, पुरुष वेद के रहते हुए एक बड़ा भव 33 सागर का रहेगा, इसलिए अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय लिया, उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर, यानी 33 सागर की आयु बांधी परंतु अनुत्कृष्ट बांधी, और फिर वंतर पुरोकोटि के बाद देव में उत्पन्न हुआ, उसने आयु के अंत में जाके दोबारा मनुष्य आयु बांधी। नपुसक वेदी जीवों ने, अभी यहाँ की काय स्थिति तो बड़ी होगी, नपुसक वेदी जीवों में चार घाती कर्मों का भंग सामान्य तीर्यंचों के समान है, यानी उत्कृष्ट करेंगे तो संगी पंचमी मिथ्या दृष्टि है और फिर एकेंद्रीय में चला गया, नपुसकवेदता नपुसक वेद्रम, इसलिए कहते कि अनंत काल हो जाएगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग स्त्री वेदी जीवों के समान है, यानी उसके नपुसक वेद के अंतिम समय में क्षपक में उत्कृष्ट होता है तो ना उत्कृष्ट का अंतर होगा ना अनुत्कृष्ट का होगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। लक्ष्मी जी आप बताओ ये ऐसा क्यों कहा, श्री वेदी में तो उसकी अपनी काय स्थिति ली, पुरुष वेदी में उसकी काय स्थिति ली, और नपुसक वेदी में तो क्या बताया, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का वंथर पूर्व कोटि ही बताया, देव में जाएगा तो पुरुष वेदी हो जाएगा, यानी स्त्री वेदी जो देवी में गया था उत्कृष्ट अनुभाग वाला, यानी वो अप्रमत्त नहीं किया था, नपुसक वेद में भी करने वाला कौन है, अप्रमत्त, और वो देवायु बांधेगा, पर देवायु बांधेगा तो वो देव में जाएगा,
नपुसक
वेद बदल जाएगा, ख्याल में आएगा बस, इसलिए एक ही भूमि दो बार आयु बांधनी है, उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी। देखो यहाँ क्या कहते, अनुत्कृष्ट के लिए तो नरक में भी भेज सकते हैं हम, देखो क्या कहते हैं, आयु की बात है ना, आयु के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण, ये समझ में आई बात, एक भव में दो बार देवायु बांधी इसमें। देवायु उत्कृष्ट अनुभाग के साथ बांधी,
आयु कोई भी बांधता है वहां पे कौन सा भी वेद का उदय उनका घात होगा तो वो बदल सकता है,
क्योंकि 33 सागर दोबारा
श्री वेदी ने 33 सागर की आयु बांधी तभी पुरुष वेद के साथ बांधी, पीछे उसने घात किया और वो देवी में उत्पन्न हुई वो जी, तो जब भी आयु बांधी तभी पुरुष वेद के साथ बांधी थी,
आयु के लिए पुरुष वेद वगैरह नहीं, आयु में आयु होती है केवल,
तो वहाँ पे कोई भी वेद का उदय
कुछ भी हो सकता है ना, हाँ देखो क्या देखो यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग की ये बंद क्या, यानी वो पढ़ेंगे हम, यानी पहले हाँ अभी उसने देवायु बांधी है उत्कृष्ट अनुभाग सहित वंधर पूर्व कोटि के अंत में आठवें अवकर्ष में दोबारा बांधी, अब अनुत्कृष्ट की बात पढ़ते हैं। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है, यानी ये नपुसक वेदी है ना तभी नरक में भेजना उसको, तो वहाँ उसका नपुसक वेद कायम रहेगा, यहाँ वंथर पूर्व कोटि और वहाँ 33 सागर नरकायु,
नरकायु के लिए ये नपुसक वेदी जीव ने दोनों बार उत्कृष्ट अनुभाग के साथ 33 सागर की आयु बांध ली और पीछे घात हो गया
फिर से,
अच्छा पीछे वो 33 सागर में चला,
गड़बड़ी कर रहे,
नहीं नहीं 33 सागर में चला,
यहाँ घात की कोई बात ही नहीं,
बात ही नहीं है, सॉरी
उत्कृष्ट अनुभाग दो बार
बांधा,
वो देवायु का ही है, वो अब यहाँ अनुत्कृष्ट में कोई भी आयु ले सकते, और यहाँ मैक्सिमम आयु अनुत्कृष्ट में कौन सी होगी? नरकायु। क्योंकि उत्कृष्ट तो देवायु के साथ उसका अनुभाग बांधेगा, या नरकायु बांधेगा तो अनुत्कृष्ट हुआ, तो 33 सागर की नरकायु बांधी, और यह बंथल पूर्व कोटि प्लस 33 सागर, 33 सागर और नारके ने अंत में जाके 3 इंच बांधी, वो भी अनुत्कृष्ट ही थी। यहाँ मूल प्रकृति में कौन सी आयु बांधी इससे कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रकृति में पर्टिकुलर आयु बांधने में हमको अंतर अलग से देखना पड़ेगा। हाँ, अपगत वेदी जीवों में, वेद मार्ग है ना, अपगत वेदी जीवों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है।
हाँ,
क्योंकि वो तो शपक के अंतिम समय होता है, पर अनुत्कृष्ट के लिए 11वें गुणस्थान का जो
काल है, वो
काल है, उसको लेना पड़ेगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उसको अपगत वेद में रखना है। एक समय में मरेगा तो सवेदी हो जाएगा, दोबारा अवगत होते हुए उसको बंध कराना है, इसलिए अंतर्मूर्त पूरा लेना। अब इसी का पूरा विशेषार्थ दोबारा बता देंगे। विशेषार्थ, स्त्री वेद में एक्चुअली स्त्री वेदी में चाहिए, वो जीव की बात है ना, स्त्री वेदी जी, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंधक शपक श्रेणी में होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल यद्यपि उपशम श्रेणी में संभव है, पर इनकी बंध विच्छित्ति के पहले ही स्त्रीवेद का उदय नहीं रहता, यानी स्त्रीवेद का उदय 9वें तक है, और बंध विच्छित्ति तो उसके 11वें में जाने पर बंध नहीं रहता है, 10वें में बंध विच्छित्ति है। इसलिए इसमें इन तीन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का भी अंतरकाल नहीं बनता, ओग में बनता है, वेद वालों में नहीं बनता। देवियों की उत्कृष्ट भव स्थिति 55 पल्ले, इसलिए इसमें आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ले कहा है, क्योंकि जो पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य, ये मनुष्य स्त्री वेदी ही लेना है, प्रथम त्रिभाग में, यानी जब वंथन पूर्व कोटि बाकी था उसको कहेंगे प्रथम त्रिभाग, आयु कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध करता है, पुनः 55 पल्ले की आयु वाली देवी होकर वहाँ, यहाँ 6 महीना काल शेष रहे, वहाँ अंतर्मूर्त काल लिखना, अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध करता है, उसके आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ले उपलब्ध होता है। ये तीरियंच आयु बांधे या मनुष्य आयु बांधे? हाँ, अभी मैंने बताया, नपुसक वेदी जीव।
एक क्वेश्चन सर।
हाँ,
उपशम श्रेणी में 9वें गुण स्थान के पश्चात प्रति समय अनुसमय वर्तना होती है, अनंत गुण अनुभाग बढ़ता है प्रकृति प्रकृति में,
वेदनी नाम गोत्र में बढ़ेगा।
हाँ, बढ़ेगा।
अन्य
और यहाँ पे शपथ श्रेणी में 9वें गुण स्थान में जो अनुभाग बताया है वो उपशम श्रेणी से भी अनंत गुण होगा।
क्या 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 क्या
हम लोग ने देखा, वेदनीय नाम और गोत्र का शपक में होता है,
शपक में अनुभाग ज्यादा है क्योंकि शपक की विशुद्धि ज्यादा है,
तो वहाँ पे अनंत गुणा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9वें गुण स्थान के पहले अंतर्मूर्त में वेद का उदय बीत जाता है, तो वहाँ पे जो हो जीव जब 9वें गुण स्थान में आया शपक में, तभी उसका अनुभाग 10वें गुण स्थान उपशम श्रेणी से भी अनंत गुणा होगा।
हाँ, पर 10वें गुण स्थान उपशम श्रेणी का यहाँ कहाँ सवाल है, वेद वाला जीव लेना है दोनों जगह।
अच्छा, हाँ,
दोनों जगह वेद की कंपैरिजन करो।
अच्छा, वेद के उदय के साथ
वैसे तो होता ही है, परंतु फिर भी वेद के कंपैरिजन करो, क्योंकि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के जो 11 स्थान बताए थे तो
शपक का,
हाँ, उपशमक,
उपशमक के बाद
शपक के लिए। क्योंकि वहाँ तो क्या है, सारे सत्ता में पड़े रहते हैं, उपशमित होते हैं, और यहाँ बिल्कुल क्षपणा हो जाता है, तो उसमें परिणामों में बहुत अंतर है। परंतु यहाँ कंपैरिजन उसकी हो ही नहीं रही
है, यहाँ पे वेद के उदय क्यों,
यहाँ बात ही नहीं है, जहाँ वेद का उदय है वहाँ तो नेचुरली होगा ही अनंत गुण। देखो अभी हमने ये श्रीवेदी की बात पढ़ी थी, अभी लास्ट जो वर्ड है नपुसक वेदी जीव 52 पेज पर आना भी, आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके पुनः नपुसक वेदी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो 33 सागर की देवायु बांधेंगे, वो उत्कृष्ट कहलाएंगे उनके लिए, इसलिए इनमें आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण कहा है। अंतर घटित करने दोबारा आयु बांधनी है पहले और आठवें अपकर्ष के बीच में। ये उसका अंतर होगा, यानी दोनों बार उसने उत्कृष्ट आयु बांधी है, इस तरह से लेना। उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके उसका अर्थ है देवायु 33 सागर की बांधी। अब बाकी अनुत्कृष्ट के लिए कोई बताए नहीं है, परंतु वो तो समझ में आवे इसलिए 33 सागर की नरका भी बांधने वाला, यहाँ का 1/3 पूर्व कोटि और वहाँ का 33 सागर, दोनों में कुछ कम कर देना। अपगत वेदी जीवों में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद, उत्कृष्ट की बात है ना, उपशम श्रेणी गिरने वाले जीव के अपगत वेद के अंतिम समय में होता है, और वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद क्षपक श्रेणी में होता है, वो भी अंत में 10वें के अंत में। चढ़ने वो तो क्षपक में तो चढ़ता ही है, इसलिए इनमें उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतर काल का निषेध किया है। ये पहले बताया था ना उन्होंने, सातों को इकट्ठा लिया था, अपगत वेदी
उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है,
प्रकृति का नाम ही नहीं लिया, ये सातों कर्मों के। छपक वाले तो अंतिम होता ही होता है, और उपशम श्रेणी उतरने वाले के भी अंतिम समय में होता है, तो फिर दोबारा वो अपगत वेदी नहीं रहता। अब आगे बढ़ते हैं, क्रोधादि चार कषाय वाले, जैसे वेद का उदय वहां तक था वैसे ही अपगत वेद होने पर भी क्रोधादि का एक एक अंतर्मुहूर्त में उदय मिटता चला जाएगा, तो क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्म और आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। देखो ओग में तो हमने अर्ध पुद्गल परावर्तन देखा था, यहाँ तो अंतर्मूर्तियों की वही कषाय अंतर्मूर्त में पलटेगी, एक एक कषाय का काल तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है, इसलिए कहते उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय, क्योंकि जब वो अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर कब होगा, जब वो उत्कृष्ट कर रहा है। ओग में तो उपशम श्रेणी में भी हुआ था, परंतु यहाँ तो उसका सवाल नहीं है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वेदनीय नाम गोत्र अपने अपने बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में होगा। लोभ में क्या लेना, इतनी विशेषता है कि लोभ कषाय वाले जीवों में मोहनीय के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि लोभ कषाय के रहते हुए उसका पुनः फिर दोबारा उसका बंध भी होना चाहिए, यानी 10वें गुणस्थान में मरण करके देव में गया और फिर दोबारा बंध किया, तो अंतर्मूर्त घटित हो जाता है, उसका लोभ कषाय चालू रहा उसके देव के पहले समय में। देखो फिर से उसी साथ जो जीव उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है उसके क्रोध मान और माया कषाय का अभाव होकर लोभ कषाय के सद्भाव में मोहनीय कर्म की बंद उच्चित होती है, फिर नौवे के अंत तक मोहनी का बंध है, दसवें में लोभ है परंतु सूक्ष्म लोभ है उसका बंध रुक गया है, और ऐसा जीव सूक्ष्म सांप्राय में मरकर देव पर्याय में यदि उत्पन्न होता है तो वहाँ भी लोभ कषाय का सद्भाव बना रहता है। इसलिए लोभ कषाय में मोहनीय के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल बन जाता है। अब यदि यह जीव दसवें गुण स्थान में एक समय तक रहकर मरता है तो एक समय अंतरकाल उपलब्ध होता है, और यदि अंतर्मूर्त रहकर मरता है तो अंतर्मूर्त अंतरकाल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि लोभ कषाय में मोहनीय के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम। केवल मोहनीय का दसवें में हमको घटाने बस इतनी बात है। अब ज्ञान मार्गना आरंभ होती है यहाँ से। मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में, यानी मत्य अज्ञानी और श्रुता अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है परंतु इसमें गुणस्थान दो लेने, एक और दो, परंतु उत्कृष्ट अनुभाग बंध चार घाती कर्मों में तो पहले में ही होगा। चार घाती कर्मों का भंग सामान्य तीर्यंकों के समान है, यानी उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल होगा, एक ही नियम में भटकने का काल, यानी असंगी तक भटका। आयु कर्म के, अब मति अज्ञानी है, आयु कर्म का उत्कृष्ट नरकायु का बांधेगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का भंग घाती कर्मों के समान है,
अनंत काल।
हाँ, अनंत काल इसमें भी, क्योंकि उत्कृष्ट बंध किया उसने तैतीस सागर के साथ, फिर वहां गया, वहां से निकला, फिर भटका, वो मति अज्ञानी ही रहा और एक इंद्रिया देव में भटक कर, अब जब कभी वो इतनी उत्कृष्ट बांधेगा तब उसको कंसिडर करना है, तो अनंत काल चला जाएगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का भंग ओघ के समान है, अनुत्कृष्ट का तो जघन्य से एक समय है और उत्कृष्ट साधिक तैतीस सागर, यानी यहाँ का वंथर और वहाँ तैतीस सागर, यानी उसने तैतीस सागर की बांधी परंतु उत्कृष्ट नहीं अनुभाग बांधा, अनुत्कृष्ट बांधा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। लक्ष्मी एक किसके कब होगा इसको, उत्कृष्ट अनुभाग बंध कब होगा? हाँ, संयम के सन्मुख, तो अंतिम समय में होगा, वहाँ उत्कृष्ट होगा तो मिथ्या दृष्टि रहते हुए दोबारा नहीं उसका उत्कृष्ट होगा एक बार, और जब तक उसका उत्कृष्ट नहीं हुआ था तब वो तो अनादि से अनुत्कृष्ट ही था, इसलिए उसको अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं, उत्कृष्ट का भी। इसी प्रकार असंयत और मिथ्या दृष्टि जीवों में जानना चाहिए, उनमें भी यही बात लागू होगी। क्योंकि असंयत में भी तो असंयम से अविरत समय दृष्टि है, संयम के सन्मुख है उसका वो उत्कृष्ट होगा, वेदीय नाम गोत्र का है ना, तो उसके उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा, वो संयम ही बन जाएगा, तो असंयम मार्गणा नहीं रहेगी, यानी कथन तो ऐसा ही होगा, वहां पर स्वामी भले जुदा होगा। विभंग ज्ञानी जीवों में बावन पेज पर है, अभी हमने मत्ते ज्ञानी श्रुता ज्ञानी की बात पढ़ी, चौथी लाइन में विभंग ज्ञानी शुरू होता है। विभंग ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों का भंग सामान्य नारकियों के समान है,
कुछ कम तैतीस सागर।
हाँ, क्योंकि विभंग ज्ञानी का काल लेना है लगातार रहने का, तो तैतीस सागर होता है कुछ कम, तो शुरुआत में एक बार किया, अंत में एक बार किया, तो कुछ कम तैतीस सागर कहाँ गया। हाँ, नारकियों के समान है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, वो विभंग ज्ञानी जब संयम के सम्मुख होगा तब इसका उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, इसलिए उसका वो संयम के सम्मुख वाले को होगा उत्कृष्ट। आयु कर्म के विभंग ज्ञान में उत्कृष्ट आयु बांधेगा तो नरकायु की बांधेगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है।
मनुष्य
तीजेंच बांधते हैं इसलिए उनका विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त तक रहता है, परंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का ये देवनारकिन के विभंग ज्ञान है उसमें इतना अंतर पड़ सकता है। जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम छह मास है। कुछ कम छह मास है देवनारकिन लेना बांधने वाले देवनारकी स्वामी। और जो अंतर्मूर्त हमने देखा है मनुष्य और तिव्यंच स्वामी है और उनका विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता और एक ही बार वो आयु बांधेगी विभंग ज्ञान के कारण। यानी दो बार आयु का बंध भी नहीं होगा। अभी विशेषार्थ इसी का पढ़ते देखो। मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान में यानी मिथ्या दृष्टि है ये संयम के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। इसलिए इनमें इन कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। अंतिम समय में उत्कृष्ट होगा वहां से वो संयम ही बनेगा समय दृष्टि होगा उसकी मार्ग पलट जाएगी है। इसलिए दोबारा मत्य ज्ञानी रहते हुए दोबारा उत्कृष्ट नहीं होगा। विभंग ज्ञान में आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध तिर्यंच और मनुष्य के होता है। वो नरकायु बांध रहे वो उसको इसलिए उनके लिए वही उत्कृष्ट है। इसलिए इसमें आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है शेष कथन सुगम में, क्योंकि हमने देखा था मनुष्य तिर्यंचों में विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त तक ही रहता है। यानी एक ही बार आयु बंधेगी उसमें उसने शुरुआत में और अंत में उत्कृष्ट किया। अनुत्कृष्ट तो देवनारकी भी कर रहे तो उनका विभंग ज्ञान कंटिन्यूस है तो पहले और आठवें अपकर्ष के बीच में कुछ कम छह महीना उनका अंतर पाया जाएगा। आभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। लक्ष्मी आप बताएंगे क्यों नहीं है? चार घाती कर्मों को कहाँ लेना? मिथ्या तो के सम्मुख तो वो अभिनुभिद ज्ञानी नहीं रहेगा, मिथ्या तो में चला जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट का अंतर में तो अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं होगा। अनुत्कृष्ट का रहेगा ग्यारहवें में, वो तो ग्यारहवें में होगा परंतु उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा। अब वेदनीय नाम गोत्र तो क्षपक के होता है उसका भी अंतर नहीं होगा, परंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है ये ग्यारहवें में मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। नहीं मरा तो ग्यारहवें में रहा तो अनुत्कृष्ट बंध यानी कोई बंध ही नहीं किया। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर क्योंकि उसको सम्यक्त्व में रखना है। यानी पहली बार समय दृष्टि हुआ तो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ देवायु
बांधा और वापस अपना
फिर बाद में वो तो
घूमता रहा
66 सागर में फिर दोबारा बांधी। यानी उसमें भी घाता है उसको समय दृष्टि होगा वो कुछ भी करेगा, 18 सागर तक कुछ भी कर सकता है सम्यक्त्व में बना रहेगा तो घाता इसको समय दृष्टि हुआ इसलिए फिर दोबारा उसने देवायु उत्कृष्ट अनुभाग के साथ बंधे। ये स्थिति का हम लगा रहे हैं कितनी स्थिति बनती पर वो संयुक्तिक लगता है।
क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति के साथ ही उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा
ऐसा लगता है क्योंकि वो तो प्रशस्त है ना आयु। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर ओघ के समान है
सादिक
यानी एक समय से लेकर सादिक 33 सागर એને વંતર પૂર્વ કોટી પહેલે દેવાયુ બાંધી અનુત્કૃષ્ટ કરકે દેવને ગયા ઓર ઉસ દેવને આયુ કે અંત મેં મનુષ્યાયુ બાંધી. ઇસી પ્રકાર અવધિ દર્શની ઓર સમય દૃષ્ટિ જીવન કે જાનના ચાહીએ. મન પર્ય જ્ઞાની જીવો મેં સાત કર્મો કે ઉત્કૃષ્ટ અનુભાગ બંધ કા અંતરકાલ નહીં હૈ. क्योंकि चार घाती का तो असंयम के सम्मुख होता है, मन पर ज्ञान नष्ट हो जाएगा बाद में, और बाकी तो शपक में होता है, उसका भी अंतर नहीं. अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है.
एक समय नहीं होगा
ये,
एक समय नहीं होगा क्योंकि देव में नहीं,
एक समय नहीं होता क्योंकि देव में जाएगा तो उसका मन पर ज्ञान नहीं होता. ये ग्यारहवें गुणस्थान का काल है. क्योंकि उसको मन पहले ज्ञान में रखकर उसको दोबारा बंद करना. आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है. क्योंकि एक ही भव में दो बार आयु बांधनी है, क्योंकि मन पहले ज्ञान तो एक ही भव में रहेगा, कुछ कम पूर्व कोटि उसका काल है, परंतु आयु का तो अंतर वन थर्ड पूर्व कोटि कुछ कम होगा. इसी प्रकार संयत सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए. इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवों के सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि ग्यारहवां गुणस्थान नहीं है. जहाँ ग्यारहवां गुणस्थान है वहीं पर अंतर पड़ेगा.
नहीं है
कह रहे हैं, उसमें ग्यारहवां गुणस्थान नहीं है इसलिए अंतर नहीं है. विशेषण आभिनिर्बोधिक आदि तीन ज्ञानों में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में होता है, और वेदनी नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंधक शपक श्रेणी में होता है, वो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम. इसलिए इनमें उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया. इनमें उक्त सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल उपशम श्रेणी की अपेक्षा बन जाता है. उपशम श्रेणी है वो तो ग्यारहवां गुणस्थान ही लेना केवल, जो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर मूर्त उपलब्ध होता है, यानी ग्यारहवां गुणस्थान. मरण की अपेक्षा एक समय भी हो सकता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है. यद्यपि आभिनिबोधिक आदि तीन ज्ञानों का उत्कृष्ट काल चार पूर्व कोटि अधिक 66 सागर है, परंतु क्षायिक का काल मिला के इतना हो सकता है. परंतु यहाँ आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर वेदक सम्यक्त्व की मुख्यता से ही यह अंतरकाल उपलब्ध होता है. क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के अंत में उसने 66 सागर के लास्ट लास्ट में उसने 33 सागर की देवायु बांधी है, तब यह वेदक में उसने आयु बांधी, फिर बाद में क्षायिक करके वहाँ गया है, तभी वो आगे का वो काल बनेगा. क्योंकि वेदक में रहते हुए ये 66 और वो 33 सागर नहीं बन सकता, यानी वेदक समय दृष्टि ने कुछ कम 66 सागर में दोबारा उत्कृष्ट आयु बांधी है, उत्कृष्ट अनुभाग वाली, और फिर बाद में क्षायिक करके वो देव में गया, ऐसा रहना पड़ेगा. यानी बाद में उसने क्षायिक किया और देव में गया. क्योंकि हमको वेदक में ज्यादा रखना है, 66 सागर तक तो वेदक में पहली बार बांधी, अंतर्मूल तो वहां पर भी छोड़ना है, लास्ट में भी आयु बांध कर फिर उसने क्षायिक किया. मन परे ज्ञान में असंयम के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है. ये तो हमने पढ़ा देखा था, वेदनीय नाम व गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंधक क्षपक श्रेणी में होता है, वो भी अंत में। इसलिए इसमें इन सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया तथा इसमें इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहने का कारण यह है कि यह जी उपशम श्रेणी पर चढ़कर अंतर्मूर्त काल तक इनका अबंधक रहता है, वो ग्यारहवे में, और दोबारा बंध करना है मन परिज्ञान में रखना है तो उसको पूरा नीचे लाकर फिर बंद करना पड़ेगा। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नवे गुणस्थान तक ही होते हैं, इसलिए इनमें आयु के सिवाय शेष सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं उपलब्ध होता, इसलिए उनका निषेध किया है, क्योंकि यहाँ गायरो और मूलस्थान ही नहीं है। शेष कथन सुगम। अब परिहार विशुद्धि संयत जीवों में, ज्ञान मार्गना हो गई हमारी, यहाँ परिहार विशुद्धि संयम की बात चलेगी, और संयम ही बाकी मन परिज्ञान के समान संयत सामयिक संयत वगैरह बता चुके। तो परिहार विशुद्ध संयत जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं
सामयिक
के छठे गुणस्थान वाला सामयिक छेदोपस्थापना के सन्मुख वाला जीव इसका उत्कृष्ट बंध करेगा तो बाद में उसका मार्गना पलट जाएगी, और बाकी तो अनुत्कृष्ट करता ही है, उसमें बीच में इन बिटवीन होगा नहीं उसका उत्कृष्ट, इसलिए अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं, उत्कृष्ट का भी अंतर नहीं। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग बंध एक या दो समय तक कर सकता है लगातार, परंतु बीच में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट भी कर सकता है, इसलिए एक समय का अंतर लिया। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि, ये परिहार विशुद्धि का काल जो है, परिहार विशुद्धि में रहने का काल कितना है तो कुछ कम पूर्व कोटि। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है, क्योंकि इसमें वेदीय नाम गोत्र कर्म का उत्कृष्ट बंध का काल एक या दो समय था, वही अनुत्कृष्ट का अंतर होगा। अथवा कहकर इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है
तो सपना में लिया,
और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है, क्योंकि हमने देखा दर्शन मुख की क्षपना में वो अनिवृत्तिकरण का जो लास्ट समय है वहाँ उसका उत्कृष्ट होगा तो दोबारा इतनी विशुद्धि नहीं होगी उसकी, तो एक समय के लिए उसका अनुत्कृष्ट हो जाएगा, अनुत्कृष्ट का अंतर हो जाएगा। दो ही विकल्प बताए, आयु कर्म का भंग मन परे ज्ञानी जीवों के समान है, क्योंकि हमने देखा परिहार विशुद्धि एक ही भव में है, और ये आयु कर्म यानी वंतर पूर्व कोटि में कुछ कम ले लेना उसको, उत्कृष्ट का भी अंतर एक समय से वंतर पूर्व कोटि, अनुत्कृष्ट के लिए भी
वैसा ही लेना
वैसा ही लेना। सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में, ये संयम मार्गना की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्राय में, अब यहाँ छह ही कर्म बनते हैं, मोहनी तो बनता ही नहीं, छह कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि इसमें देखना है जो तीन घाती कर्म है उसको सूक्ष्म सांप्राय उपशम श्रेणी से उतरने वाला अंतिम समय में होगा, बाद में वो मार्गना नहीं रहेगी, और वेदीय नाम गोत्र का तो क्षपक के चढ़ने वाले को होगा, क्षपक को अंतिम समय में, उसका भी अंतर नहीं होगा। संयता संयत जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट मिथ्या तो के सम्मुख वाले के होगा, उसका अंतर नहीं होगा, क्योंकि संयमा संयम छूट जाएगा, और वेदीय नाम गोत्र का संयम के सम्मुख होगा, वो भी संहिता संयम संयम ही हो जाएगा। जब उत्कृष्ट ही का अंतर नहीं तो अनुत्कृष्ट का भी अंतर यहाँ नहीं पड़ सकता। आयु कर्म का भंग परिहार विशुद्ध संयत जीवों के समान है, क्योंकि संयमा संयमी है, एक ही भाव में रहता है। तो आयु का तो कुछ कम बंसर पूर्वक होती उत्कृष्ट का अंतर हुआ, जगन अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्वक होता, दोनों के लिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों के लिए। समझ में आए ना यहाँ? अब आगे बढ़ते हैं, लेशा मार्गणा की बात अभी हम देखेंगे। नहीं, पहले तो चक्षुदर्शनी जीवों में, चक्षुदर्शनी जीवों में त्रस पर्याप्तकों के समान भंग है। अभी यहाँ काय स्थिति हमको याद होनी चाहिए, चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट करने वाला जो है उसका जघन्य अंतर एक समय होगा, और उत्कृष्ट अंतर त्रस पर्याप्त यानी 2000 सागर कुछ कम होगा। पहले भाव में उत्कृष्ट किया, अंतिम भाव में उत्कृष्ट किया। और वेदिनी नाम गोत्र का तो उत्कृष्ट का अंतर पड़ता नहीं है, वो तो क्षपक के अंत में होता है। अनुत्कृष्ट के लिए सबके एक, हाँ वो 11वें गुण स्थान में हो जाएगा, एक समय से अंतर में। अब लेशा मार्गना में कृष्ण लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर, जो कृष्ण लेशा का काल जो है ना, यानी वो जाने के पहले अंतर्मूल जो है, जाने के पहले अंतर्मूल बढ़ाना पड़ेगा, वही उसके अति संकलेश हो गए, क्योंकि आने के बाद तो अपर्याप्त जीव होगा,
उसका उत्कृष्ट ही होगा,
और अपर्याप्त अवस्था में उसकी लेशा भी पलट जाएगी, पर्याप्त होने तक वही लेशा नहीं रहेगी कृष्ण लेशा। तो नरक में जाने के पहले का अंतर्मूल बढ़ा देना, वो साधिक 33 सागर हो जाता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, क्योंकि वो उत्कृष्ट एक या दो समय तक ही कर सकता है, अन्यथा अनुत्कृष्ट का बंध नहीं होने का कोई कारण नहीं है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर।
वेदनीय नाम गोत्र का अच्छा सर्व विस्तृत समय दृष्टिकोण है, सर्व विस्तृत समय दृष्टि नार्किक होगा।
हाँ, नार्किक होगा सर्वविस्तृत समय दृष्टि। समय दृष्टि नारकी है ना, क्योंकि नारकी इसलिए लेना कि मनुष्य में कृष्ण लेशा होगी पर विशुद्धि बढ़ेगी तो उसकी शुभ लेशा हो जाएगी। अब यह हमने कुछ कम 33 सागर, क्योंकि वहां जाने के बाद वो समय को प्राप्त किया और समय को में रहते हुए उसने शुरुआत में उत्कृष्ट बंध किया वेदिनी नाम गोत्र का, और फिर अंत में निच्छात में जाने के पहले फिर दोबारा बंद किया, इस तरह से कुछ कम 33 सागर हो जाता। हाँ, अंत में निच्छात जाने के पूर्व में
दो अंतर्मुख कर ले,
उसको सम्यक्तो में रखना है। सम्यक्तो का काल कुछ कम 33 सागर है, शुरुआत में एक बार उत्कृष्ट किया, अंत में एक बार उत्कृष्ट। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है। देखो, क्योंकि यहाँ लेशा की कंडीशन थी, कृष्ण लेशा में नरकायु बांधी, पर आयु बंद हुआ लेशा के काल में, जो लेशा का अंतर मूर्त है उसमें दो बार उसने उत्कृष्ट बांधी। ये मनुष्य बांधने वाला मनुष्य है तीर्यंच। नरकायु बांधी ऐसा लेना, तो इसलिए अंतर्मुख में पलटेगी। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, जब बीच में उसने उत्कृष्ट किया तब, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना है, ये नारकी में उनकी लेशा चालू रहती है, और वो जो बांधेगा वो अनुत्कृष्ट ही होगा, कृष्ण लेशा के लिए वो अनुत्कृष्ट होगा, क्योंकि कृष्ण रेशा में आयु का उत्कृष्ट अनुभाग बंध नरकायु का होगा,
मनुष्य की भी हाँ।
और अनुत्कृष्ट तो अन्य कोई भी आयु, और नारकी भी करता है, और नारकी के लिए उसकी रेशा तो लगातार वही रहेगी। इसी प्रकार छह रेशा वाले जीवों के आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का समान अंतर है। समानांतर है उसका अर्थ क्या है?
आयु कर्म के लिए
देखो, देखो, एक एक की बात करते हैं। नील लेशा में और कपोत लेशा में आयु उत्कृष्ट नरक की बंधेगी ना,
सत्रह का गर्भ
तो उसमें नरक की आयु बंधी है और अंतर्मूल में फिर दोबारा बांधी, तो उत्कृष्ट का अंतर एक समय से अंतर्मूल हुआ, और अनुत्कृष्ट का अंतर अभी अनुत्कृष्ट में
नरकी को लेना,
परंतु वो कितना लेना?
कुछ कम छह माह,
हाँ कुछ कम छह माह, ये सबके लिए लागू होगा। अब पीत ले, पीत पद्म लेशा शुक्र लेशा में देव उनको लेना, वहाँ उत्कृष्ट आयु बांधने वाले यहाँ पीत पद्म शुक्र लेशा वाले अप्रमत्त लेना, तो अंतर्मूल में उसकी लेशा पलटेगी, इसलिए एक समय से अंतर्मूल।
अनुत्कृष्ट के लिए छह माह,
अनुत्कृष्ट के लिए एक समय से कुछ कम छह महीना, इसलिए सभी लेशाओं में यही बात घटित होगी। अब अन्य कर्मों की बात पढ़ेंगे, अभी तो कृष्ण लेशा की हो गई। नील और कापोत लेशा वाले जीव में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। उत्कृष्ट अंतर क्रम से कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर, क्योंकि उत्कृष्ट कौन करेगा? नारकी ही उत्कृष्ट
करेगा।
कृष्ण लेशा में उत्कृष्ट करने वाला मनुष्य तीर्यंत भी था, क्योंकि कृष्ण लेशा में मनुष्य तीर्यंत भी वो सत्तर कोड़ा कोड़ी जैसा समान बंद करता है, तो अनुभाग भी वो नरकायु का उत्कृष्ट हो सकता है।
पर
नील और कपोत में मनुष्य और तीर्यंत अंत कोड़ा कोड़ी का ही बंद करते हैं, तो उसका अनुभाग भी कंपेरेटिवली कम होगा। ख्याल में आई ना बना? तो नारकी ही करेगा। नारकी कब वो करेगा? पर्याप्त होने पर,
कुछ कम कब?
इसलिए उसकी अपनी स्थिति से कुछ कम लेना। इसलिए यहाँ क्या कहा? नारकी के उत्कृष्ट होता है वो पर्याप्त होने पर उत्कृष्ट करता है, इसलिए कुछ कम अपनी स्थिति में से कुछ कम कर देना। फिर पढ़ती हूँ मैं, नील और कापोत लेशा वाले जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। एक के लिए, एक समय के लिए उसने अनुत्कृष्ट किया। नील कपोत में तो वहां तो सपना की बात तो है ही नहीं, वेदिनी नाम गोत्र के लिए ही सर्व विशुद्ध समय दृष्टि लेना है। और उत्कृष्ट अंतर क्रम से नील के लिए क्या है? कुछ कम सत्रह सागर, और कपोत के लिए कुछ कम सात सागर। ये समझ में आई ना कुछ कम क्यों किया? क्योंकि नरक में उत्पन्न होने पर, पर्याप्त होने पर उसने संकलेश ज्यादा किया, तब उत्कृष्ट बंद किया, और आयु के अंत में दोबारा किया। कृष्ण लेशा में हमने जाने के पहले का अंतर्मूर्त बढ़ाया, वैसे यहाँ नहीं बढ़ा सकते। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर दो समय है। जब वो उत्कृष्ट कर रहा है तब इसका अंतर होगा। पीत और पद्मलेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का, यहाँ पर भी देव मिथ्या दृष्टि उसका बंध करेंगे उत्कृष्ट, जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर क्रम से साधिक दो सागर व साधिक अठारह सागर है। इन्हें जाने के पहले उसका बंद करके वहां गए है, इस तरह से लेना नहीं, वही पर देव में ही किया उसने, जाने वाले ने नहीं किया जैसे न, हाँ वहां पर जाने देव मिथ्या दृष्टि ही करेगा पर्याप्त होने पर। यहाँ कुछ कम इसलिए नहीं कहते कि घाता इश्क वाले की साधिक आयु है, वो ही लिए हैं, उसमें से कुछ कम कहेंगे तो भी वो साधिक
ही हो जाएगा।
अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है। घाता इश्क से वो वहां की आयु ज्यादा ले, घाता इश्क मिथ्या दृष्टि, साधिक इसलिए लिया है। अनुत्कृष्ट का तो जब उत्कृष्ट कर रहे तब अंतर पड़ेगा, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है,
संयम का कर्म,
क्योंकि संयम अप्रमत्त जीव के होगा वो।
अप्रमत्त को उत्कृष्ट अनुभाग बंधेगा, बराबर है।
अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है, उसका अर्थ क्या है? पीत और पद्म में किसको लेना है? दर्शन मुखी क्षपणा में लेना है। इसीलिए वहां एक समय, जैसे ऊपर हमने देखा था ना, अथवा करके परिहार विशुद्धि में एक समय घटित किया था, वैसे यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि अंत में अगर उसको उत्कृष्ट लेते तो अंतर नहीं बताते, बीच में है ना उसके, उसी लेशा में बीच में उसने क्षपणा की, आगे पीछे वही रेशा चालू रही।
ये भी कपड़ा सातवें गुणस्थान में लेना है ना,
सातवें वाले को ही लेना है, वही विशुद्धि ज्यादा होगी ना उसकी। हाँ, उत्कृष्ट का अंतर नहीं है और अनुत्कृष्ट का एक समय है। शुक्ल लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर साधिक 18 सागर है। वो आनत वाला देव लेना है, मिथ्या दृष्टि, संकुलेश वाला, वो उसको उत्कृष्ट बंध करेगा और साधिक 18 सागर के अंत में दोबारा करेगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। अब यहाँ तो 11वें गुणस्थान में होगा क्योंकि शुक्ल लेश है। अनुत्कृष्ट हो गए ना अंतर मुहूर्त, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर काल ओह के समान है।
उत्कृष्ट
का तो अंतर नहीं है,
एक समय से अंतर मुक्त,
और अंतर या
एक समय से,
एक समय से अंतर मुक्त। वही 11वें में इसी का विशेषार्थ बता दे, अभी हमने देखा था, फिर देखते थे। कृष्ण रेशा वाले जीवों के चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध तीन गति में संभव है, मनुष्य तीर स्नान की तीन, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा है। जो नरक जाने के सन्मुख कृष्ण रेशा वाला जीव है उसके अंत में कृष्ण रेशा हो जाती है, और नरक से निकलने के बाद भी अंतर्मुत काल तक यह बनी रहती है, इसलिए साधिक 33 सागर काल उपलब्ध हो जाता है। परंतु हमने वहां लिखा भी था और अभी हमने चर्चा भी की कि उत्कृष्ट बंध जो है वहां जाने वाले के होगा, वहां से लौटने वाले को शुरुआत में तो अपर्याप्त अवस्था होगी, अपर्याप्त अवस्था में उत्कृष्ट बंध नहीं होता, यानी जाने के पहले अंतर्मुहूर्त पर जब कृष्ण रेशा शुरू हुई थी तब उसने उत्कृष्ट बंध किया, अंतर्मुहूर्त कृष्ण रेशा में रहा और फिर वहां नारकी चातुर नरक का नारकी हुआ, और उस नरक के अंत में जाके उसने उत्कृष्ट बंध किया लास्ट में, यानी कृष्ण रेशा बनी रही थी बाद में, परंतु वो तो उसका बंध नहीं होगा पृष्ठ, परंतु अभी कृष्ण रेशा में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध असंयत समय दृष्टि सर्व विशुद्ध नारकी के होता है, क्योंकि मनुष्य तीन इंच विशुद्धि बढ़ेगी उसके तो उसके उसकी लेशा पलटेगी, लेशा शुभ हो जाएगी, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर कहा है, यानी वहां जाने के अंतर्मुहूर्त बाद उसने सम्यक दृष्टि हुआ है तब उसकी विशुद्धि हुआ वगैरह वगैरह लेना, फिर या तो उसको सम्यक्त्व में रखना या बीच में मिथ्या विषय कर फिर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त किया लास्ट में। कृष्ण लेशा में आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध तीर्यंच और मनुष्य के होता है, पर क्योंकि वो नरकायु बांध रहे इसलिए इसमें आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, क्योंकि इनके एक लेशा अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं पाए जाते, यानी एक बार जो कर्ष काल है एक ही बार जो अंतर्मूर्त बांध रहा है उतने ही उसका उत्कृष्ट होगा दो बार। नील और कापोत लेशा में अब यहाँ जाने वाला अंतर्मूर्त नहीं लेना है, क्योंकि मनुष्य तीन इंच नील कपोत वाले इतना अनुभाग नहीं बांध सकते। 7 कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध नारकियों के ही होता ही लगा, इसलिए इनमें 7 कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर क्रम से कुछ कम 17 सागर नील के लिए, कुछ कम 7 सागर कपोत के लिए होता है। पीत और पद्मलेशा में 4 घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध देवगति में होता है, ये मिथ्या दृष्टि देव लेना वहां पर, और देवों में पीत लेशा का मुख्यता से 2 कल्प तक और पद्मलेशा का 12 कल्प तक निर्देश किया जाता है। 2 कल्प तक का अर्थ क्या है वो तो साधिक 2 सागर बताएंगे, और 12 कल्प तक का अर्थ क्या है
18 सागर साधिक 18
एक्चुअली ये कल्प उन्होंने 12 लिखा है वो बात बराबर नहीं है, 2 स्वर्ग तक लिखो चलेगा, कल्प अलग बात है स्वर्ग अलग बात है, नहीं समझे
नहीं समझे
कल्प कितने हैं
6 है ना, कल्प
12 है और स्वर्ग कितने हैं
16 तो नीचे के 1 से 12 कल्प को हम लोग स्वर्ग को हम कल्प भी कहते हैं ना, 1 से 12 स्वर्ग को
ना,
सौधर्म पहला कल्प
सौधर्म,
दूसरा ईशान
ये हो गया, फिर तीसरा चौथा ये 4 हो गए, पांचवा छठवा मिलकर 1 हुआ, सातवा आठवा मिलकर 1
हुआ,
फिर ये कॉमन हो गए, 2 कम हो गए ना यहाँ पर, इस तरह से वो तो कल्प 12 ही होते हैं और स्वर्ग 16 होते हैं। 2 कल्प तक तो ठीक है, परंतु 12 कल्प तक बताया वो तो 12 स्वर्ग तक होना चाहिए,
यहाँ 12वां कल्प तो
अरण अच्युत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा कहाँ गया
स्वर्ग लिखना कर रहे हम लोग स्वर्ग
कहाँ गया कृष्ण पीत और पद्मलेशा में, हाँ पीतलेशा का मुख्यतः से 2 कल्प तक वो तो ठीक है, पद्मलेशा का 12वें स्वर्ग तक लिखा, 12वें के लिए स्वर्ग को निर्देश किया जाता है। इनकी उत्कृष्ट आयु क्रम से साधिक 2 सागर और साधिक 18 सागर हैं, इसलिए इनमें 4 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर उक्त काल प्रमाण कहा है। ये समझ में आई ना बात, क्योंकि पीत पद्मलेशा में संकलेश किसके हो गए तो देवों के ज्यादा हो, मनुष्य तीरियंचों के तो विशुद्धि होगी यहाँ पर ज्यादा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध इन लेशाओं में सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत के होता है तथा पुनः उत्कृष्ट अनुभाग बंदी की योग्यता आने तक रेशा बदल जाती है। अतः इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंद के अंतरकाल का निषेध किया है।
सर्व विशुद्ध लेना है ना?
हाँ, सर्व विशुद्ध लेते हैं, परंतु हमने उसमें दर्शनों की सपना वाला लिया था ना,
एक समय लिया था, वो अथवा कहीं के बताया था ना,
ये उन्होंने जो लिखा ना, दोबारा योग्यता ही नहीं होगी उसकी। दर्शनों की सपना में एक समय के लिए होगा, यानी उन्होंने योग्यता आने की लेखा बदल जाती है कारण दिया, वो बराबर नहीं है,
निकल जाएगा ना?
नहीं, वहाँ ब्रैकेट करो, यहाँ लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा देखो, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद, इन रेशाओं में सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत के यहाँ लिखो दर्शन मुखी सपना में होता है। होता है अब कहते पुनः अनुभाग बंद की योग्यता आने तक लेशा बदल जाती है, निकाल देना। अभी दोबारा तो दर्शनों की क्षमा नहीं करेगा, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंद के अंतरकाल का निषेध किया। इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय कहने का कारण यह है कि इनमें इन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, और वो काल वही है दर्शनों की क्षपना में, जो भी हमने लिखा है साइड में वहीं पर एरो कर दो। एक समय क्यों कहा उसकी बात, क्योंकि करण परिणाम का अंतिम समय लिया था ना वहां पर, शुक्ल लेशा में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद सहस्रार कल्प तक लिखा है, वो बराबर नहीं है,
कल्प में होता है
वहाँ, सहस्रार कल्प में ले लो या अनंत का जो कम आयु वाले जो है ना शुक्ल रेशा वहाँ पर भी ले सकते हैं, सारी कथा रसागर, क्योंकि सहस्रार में भी शुक्ल रेशा के कुछ जीव हो सकते हैं, वो तक निकाल कर मैं लिखना है।
नहीं, आनंद प्राणक में जो शुक्ल लेखे वाला होगा उसको
भी उत्कृष्ट होगा,
नहीं पर उसको विशुद्धि में वो विशुद्धि विशुद्ध जीव हो गए, नहीं वहाँ पे भी वो संकलेश तो
अति संकलेश वाला मिथ्या दृष्टि लेना है नहीं,
तो आनंद प्राणक में लेना पड़ेगा ना,
शादी कटारा में अनाथ में ही लिया था, परंतु यहाँ तो उन्होंने तक लिखा उसके बदले मैं लिखो, ससुराल कल्प में होता है लिख सकते हैं, इसलिए इसमें इन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का उत्कृष्ट अंतर साधी कठार और सागर कहा है, शेष कथन सुगम है। ख्याल में आती है ना ये बात, देखो अभव्य जीवों में, भव्यों में तो ओके समान घटित होता है सब कुछ, अभव्य जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, क्योंकि हमने देखा ना चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट करने वाले कौन है,
संकलेश वाला,
मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय में चले जाएंगे,
अभी तो मिथ्या दृष्टि है,
अभी वेदी नाम गोत्र का कौन करेंगे,
सर्व विशुद्ध
कौन,
मिथ्या दृष्टि की
वो अभव्य, तो मिथ्या दृष्टि कहने की क्या जरूरत है, द्रव्य संयमी को लिया था शायद,
द्रव्य संयमी को,
इसलिए अंतरकाल अनंत काल लिया, असंख्यात पुद्गल पर आवत, पुद्गल पर असंख्यात पुद्गल पर आवत, अनुत्कृष्ट अनुभाग बन देता जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर दो समय, जब वो उत्कृष्ट कर रहे हैं तभी अनुत्कृष्ट का अंतर होगा, अदरवाइज तो हर समय बंधित ही रहते हैं। आयु कर्म का भंग मत्स्य ज्ञानी जीवों के समान है। यहाँ पर भी उत्कृष्ट अनुभाग बंधन नरकायु के साथ बंधेगा,
एक समय का अंतर है।
तो उत्कृष्ट का अंतर कितना होगा, क्योंकि अभव तो अभव ही है, वो मार्गना बदलने की कोई बात नहीं है।
तो
उत्कृष्ट का जगन अंतर एक समय,
और उत्कृष्ट अंतर अनंत का,
उत्कृष्ट अंतर अनंत का, क्योंकि दोबारा ऐसी वो आयु बांधेगा।
अनुत्कृष्ट
में दो भव लेना है,
सात्विक 33 समय।
तो यहाँ वंतर पूर्व कोटि और वहाँ 33 साल, ख्याल में आई बात। उत्कृष्ट के लिए एक समय से अनंत काल, और अनुत्कृष्ट के लिए दो बार दो भवों में आयु बांधी, तो साधिक 33 साल। विशेष अर्थ लिखते हैं, देखो, अभव्य जीवों के एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है, और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल, यानी वो एक इंद्रियादि में बटेंगे। इसी से यहाँ आयु कर्म के अतिरिक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। यह स्पष्ट है कि इन सात कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के होता है, शेष कथन सुगम है। आयु की बात तो उन्होंने
अलग से बताई,
छोड़ दिया, इसे पहले बता चुके। शायिक समय दृष्टि जीवों में पहले वेदक की बात और अभिनिबोधिक की बात बताई थी, नहीं वेदक की नहीं बताई, अभिनिबोधिक की बताई थी सामान्य से। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है,
चौथे गुणस्थान में,
क्योंकि वो क्षायिक समय में रहने का काल है। यानी चौथे वाले ने किया, फिर 33 सागर से लौट कर चौथे में आया, फिर उसने किया संयम में जाने के पहले। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख, ये 11वें में। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग ओभ के समान है,
उत्कृष्ट का अंतर,
यानी उत्कृष्ट का अंतर नहीं है, अनुत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मुख। आयु कर्म के शायिक समय दृष्टि में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है, पहले और आठवें अपकर्ष के बीच में, क्योंकि अभी दोबारा भी इसको शायिक समय दृष्टि है, तो यहाँ की आयु करके फिर मनुष्य होकर मोक्ष ही जाने वाला है, तो एक ही भूमि दोबारा आयु बांधनी है उत्कृष्ट को। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर ओघ के समान है, यानी वहाँ वंथर पूर्व कोटि प्लस 33 सागर, इनमें से कुछ कम कर देना, इसको हम साधिक 33 सागर भी कहेंगे। यानी दो भवों में आयु बांधनी है उसकी, विशेषार्थ पढ़ते हैं हम इसको। शायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर, इसलिए इसमें चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा, यानी वो सर्व संकलेश वाला चौथे गुणस्थान वाला लेना है। उपशम श्रेणी में शायिक सम्यक्त्व भी होता है, और इसमें चार घाती कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर का अंतर्मूर्त बन जाता है, चार घाती कर्मों का भी और तीन अघाती का भी बनेगा, यानी सातों कर्मों का अनुत्कृष्ट का अंतर्घटित होगा, अंतर्मूर्त बन जाएगा। इसलिए शायिक सम्यक्त्व में इन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। वैसे जघन्य अंतर तो एक समय घटित हो ही जाता है, जब बीच में उत्कृष्ट कर रहा है तब भी, या 11वें में भी हो सकता है। वेदक समय दृष्टि जीव में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है,
मिथ्यात्व के सम्मुख और श्रेणी के सम्मुख,
सात कर्मों के नहीं, चार घाती कर्म तो मिथ्यात्व के सम्मुख है,
और श्रेणी के सम्मुख हो जाएंगे।
श्रेणी के सम्मुख
वेदक सभी वस्तु जो श्रेणी के सम्मुख होता है
वहाँ व्यवसायिक करता है, तब सपना में भी कर सकते हैं।
सपना में भी होगा,
एक समय के लिए होगा ना, तभी अनुत्कृष्ट का अंतर बन सकता है। वेदिने नाम गोत्र से अनुत्कृष्ट का अंतर कब होगा? अंतिम समय में लेंगे तो उसका अंतर नहीं बनेगा। तो सपना अगर सरना में उत्कृष्ट करेंगे एक समय के लिए
तो
अनुत्कृष्ट का अंतर हो जाता है, परंतु चार घाटी के अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा।
नहीं,
यहाँ लिखा दिखाओगे, इतनी विशेषता है कि चार घाती कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं, वो तो अंतिम समय में, और एक सपना इन बिटवीन की, तब एक समय के लिए वेदिनी नाम गोत्र का उसने उत्कृष्ट किया था। आयु कर्म का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है, यानी हमने कुछ कम 66 सागर देखा था, और अनुत्कृष्ट का सादिक 33 सागर लिया था, क्योंकि दो भव लेना है ना इसमें। उपशम समय दृष्टि जीवों में ये कुछ कम 66 सागर, उत्कृष्ट का अंतर कुछ कम 66 सागर, अनुत्कृष्ट का दो भव यानी सादिक 33 सागर। अभी हमने देखा था ना अभी निबोधिक में,
हाँ,
उपशम समय दृष्टि जीवों में, अभी उपशम समय तो का काल ही अंतर्मूर्त का, हाँ, सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है।
मिथ्यात्व के सम्मुख वाले को,
वो मिथ्यात्व के सम्मुख है,
और ये में
उपशम समय दृष्टि जो है, उपशम समय तो श्रेणी में भी है ना,
तो श्रेणी का अंतिम
दसवें के अंतिम अंत में होगा, उसका अंतर नहीं है, क्योंकि लौट कर आएगा तो उपशम समय को बना रहेगा परंतु अनुत्कृष्ट करेगा, दोबारा उसी समय को में दोबारा नहीं होगा, द्वितीय उपशम उसको दोबारा करना पड़ेगा अलग से, इसलिए कहते उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, ये 11वें गुणस्थान में बन जाता है, सातों कर्मों का 11वें गुणस्थान में एक समय से अंतर्मूर्त
अनुत्कृष्ट का बन जाते।
अब इसी का विशेषार्थ देख लेते, वेदक सम्यक्त्व में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया। उत्कृष्ट का अंतर नहीं होता, अनुत्कृष्ट का भी नहीं होता। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत जीव के होने से इसमें इन तीन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतर का निषेध किया है, परंतु वो इन बिटवीन होता है ना, दर्शन मुखी क्षपक के होता है, वो एक समय के लिए होता है, इसलिए अनुत्कृष्ट का अंतर बन सकता है। उपशम सम्यक्त्व में ना, अपन वो दर्शनों के क्षपक को लेते हम वहां नहीं ले सकते,
हाँ,
पर वो वेदक ही रहेगा ना, कृत्य कृत्य वेदक तक वो वेदक ही रहेगा, और उसके पहले उसके अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय बराबर है, दर्शन मौखिक क्षपक में ही होगा एक समय के लिए, बाद में भी वो वेदक रहता है ना अंतर्मूर्त।
हाँ,
उपशम सम्यक्त्व में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख जीव के अंतिम समय में होता है, उसका भी लौट कर फिर उत्कृष्ट नहीं होगा, और वेदनीय नाम व गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध उपशम श्रेणी में सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होता है, इसलिए इन सातों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंधक के अंतरकाल का निषेध किया है, क्योंकि दोबारा उसको उपशम श्रेणी मानने के लिए दोबारा उपशम करना पड़ता है, द्वितीय उपशम अलग से। तथा उपशम सम्यक्त में उपशम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम एक समय तक, यानी ग्यारहवें गुणस्थान में, अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक इनका बंधन नहीं होता। यानी ग्यारहवें में से मरकर मध्यवे में जाएगा तो भी उपशम समय दृष्टि रहा, तो उसके एक समय से अंतर्मुहूर्त अंतर्घटित होता था। इससे इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त कहा है। साधन समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। क्योंकि मिथ्या तो के सम्मुख उसका उत्कृष्ट होगा, फिर लौट कर उसका अनुत्कृष्ट भी नहीं होगा, उत्कृष्ट भी नहीं होगा। वेदनीय आयु और नाम, वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। वो कभी कभी भी उसकी विशुद्धि होती है तो अंतर्मुहूर्त के अंतर से कर सकता है। आयु भी एक बार बंधी है अंतर्मुहूर्त, तो उसमें एक बार उत्कृष्ट और अंत में उत्कृष्ट ऐसा कर सकता है, बाकी सबके लिए भी ऐसा ही लेना। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, बीच में उसने उत्कृष्ट किया, और उत्कृष्ट अंतर दो समय। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। सासाधन में तो चार घाती का अंतर नहीं था, वेदनी आयु नाम गोत्र का था, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में सात ही कर्म बनते हैं,
सम्यक तो के
सम्यक तो उत्कृष्ट का भी अंतर नहीं, अनुत्कृष्ट का सातों के लिए। विशेषण, सासाधन सम्यक्त्व में मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद के अंतरकाल का निषेध है। जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा अनुत्कृष्ट ही है, किंतु वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का सर्व विशुद्ध जीव के उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, इसलिए इसमें इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त कहा। अवली से ज्यादा हो जाएगा तो अंतर्मुहूर्त हो जाता है ना, छह अवली का काल है, ये उत्कृष्ट विशुद्धि कहीं पर भी होगी उसके। मिथ्या तो के सन्मुख वाले के नहीं लेने, शुरुआत में ले लेना। शेष कथन सुगम है, यही रुकेंगे अभी हम, संगी की बात कर देखें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो।
नमोरियंतानं नमोचित्रानं नमायनं नमोदनं नमोलोय तपस्तवनं। नमोरियंतानं नमोचित्रानं नमायनं नमोदनं नमोलोय तपस्तवनं।